जुर्माना देना पड़े। प्रोफेसर रामचरण शर्मा ने लिखा है, यह ऐसा प्रावधान है जिसे हम पूर्व के विविध ग्रंथों में नहीं पाते। दूसरी शताब्दी में दक्षिण में वर्ण व्यवस्था इतना गड़बड़ा गई थी कि यह महत्वपूर्ण है कि इस काल के अंतिम भाग में सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दावा किया है कि उन्होंने ब्राह्मणों और शूद्रों को समझा बुझाकर वर्ण व्यवस्था की गड़बड़ी को दूर किया और पुनः चातुर्य वर्ण व्यवस्था स्थापित की। इस काल में शिल्पियों की दशा में थोड़ा सा सुधार हुआ तो उसके साथ साथ यह भी हुआ कि वर्ण संकर जातियों ने महत्वपूर्ण शिल्पों को अपनाया। यही नहीं, मनु ने जो विधान दिया है उससे स्पष्ट है कि कुछ ब्राह्मण शूद्रों को पढ़ाते थे, किंतु ब्राह्मणों का एक वर्ग ऐसा भी था जो शूद्रों के धार्मिक अनुष्ठान में सहायक का काम करता था। ब्राह्मण शूद्रों से धन लेकर अग्निहोत्र करते थे। बाद में यह भी बताया गया कि शूद्र छोटे मोटे घरेलू यज्ञ कर सकते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि ईसा की पहली शताब्दी से भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, वर्ण व्यवस्था की नींव हिलने लगी। प्रोफेसर रामचरण शर्मा ने निष्कर्ष निकाला है, शूद्र की स्थिति में परिवर्तन के इन लक्षणों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जिस पुराने समाज ने उन पर अनेकानेक अशक्ताएं लादकर उन्हें गुलाम बना रखा था वह विलीन होने लगा था और उसकी जगह ऐसा नया समाज पनप रहा था जिसने उन्हें बेहतर स्थान दिया। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को गुप्त काल में और अधिक बढ़ावा मिला। युगांत शब्द के बार बार प्रयोग से उन मूल्यों के विनाश का संकेत मिलता है जो प्राचीन समाज के आधार थे। युगांत शब्द का बार बार प्रयोग निस्संदेह महत्वपूर्ण है। इसकी सार्थकता भौतिक क्षेत्र से अधिक भावनात्मक अर्थात साहित्यिक और धार्मिक क्षेत्र में प्रकट हुई है। दक्षिण भारत में इन परिस्थितियों का कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ा होगा। सातवाहन शासक उत्तर भारत के नहीं थे, जिन्होंने ब्राह्मणों और शूद्रों को समझा बुझाकर किसी प्रकार वर्ण व्यवस्था पुनः स्थापित की। इससे लगता है कि शूद्रों एवं शिल्पियों की स्थिति में सर्वत्र सुधार हो रहा था। जब कहीं उनकी स्थिति बेहतर हो जाती थी तब वे वर्ण व्यवस्था में कुछ ऊपर की स्थिति में पहुंचने का प्रयास करते थे। पहली शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में कई शताब्दियों तक राजसत्ता अनेक पराक्रमी शासकों के हाथ में रही। चोलवंशी शासक करिकाल ने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की व्यवस्था की। श्रीलंका के बंदियों को लगाकर कावेरी के मुहाने पर पुहार का प्रसिद्ध बंदरगाह निर्मित करवाया। इससे व्यापार और उद्योग की बहुत उन्नति हुई और सर्वतोमुखी आर्थिक विकास हुआ। दक्षिण की उन्नति में कांचीपुरम का विशेष स्थान है। यह पर्वती शासकों पल्लवों की राजधानी थी। सातवीं शती के अंतिम और आठवीं शती के प्रारंभ में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। कांची में उसने प्रसिद्ध राजसिंहेश्वर मंदिर बनवाया। उसके समय चित्रकला की बहुत उन्नति हुई। 720 ईस्वी में उसने चीन को राजदूत भेजा। तत्कालीन चीनी शासक से उसका समझौता भी हुआ। कांचीपुरम के शिल्पियों का सम्मान 10वीं शताब्दी में और बढ़ा। मद्रास म्यूजियम के उत्तम चोल ताम्र पत्र के अनुसार कांचीपुरम के बुनकरों को स्थानीय मंदिर की वित्तीय देखभाल का काम सौंपा गया था। इन बुनकरों को वैश्यों व्यापारियों जैसा सम्मान अवश्य मिला होगा। यहाँ यह स्मरण कर लेना अप्रासंगिक न होगा कि रामानुजाचार्य का जन्म कांचीपुरम के पास भूत नगरी में हुआ था और बचपन में ही विद्या अध्ययन के लिए यादव प्रकाश के पास कांचीपुरम में आ गए थे। कांचीपुरम में ही उनकी भेंट भक्त कांचीपूर्ण से हुई। कांचीपूर्ण रामानुज के शूद्र गुरु थे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की उद्भव की जिन परिस्थितियों का उल्लेख ऊपर किया गया उनसे लगता है कि भक्ति आंदोलन के उद्भव और प्रचार की परिस्थितियां उत्तर और दक्षिण दोनों स्थानों पर एक तरह की थी। इस्लाम के आगमन के पूर्व ही इस देश में देश के विभिन्न भागों में शिल्पियों विशेषतः वन्यजीवी शिल्पियों का महत्व बढ़ा हुआ था। इस देश में वर्ण व्यवस्था इस अर्थ में शिथिल होने लगी थी कि आर्थिक स्थिति सुधरने पर शूद्र या निम्न वर्ण की जातियां ऊपर के वर्ण में घुस आई थी। जाति व्यवस्था के फलने फूलने के लिए स्थिर सामाजिक व्यवस्था बहुत उपयोगी होती है। इसलिए जब जब कोई विदेशी और भिन्न धर्मावलंबी आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लेता था, तब तब इसमें थोड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता था। मनु के समय में वर्ण व्यवस्था में जो शिथिलता आई, यानी नीचे की जातियों का जो ऊपर आना शुरू हुआ, वह कुषाणों शकों के आक्रमण और विजय का परिणाम था। विदेशी प्रभाव का सर्वाधिक उपयोग अंदरूनी असंतुष्ट किंतु समर्थ तत्व करते हैं। भारत के प्राचीन व्यापार में शिल्पियों की प्रमुख भूमिका रही है। इनकी स्थिति में सुधार भी होता रहा है। दक्षिण में सूती कपड़ा उद्योग, स्थापत्य और नौका निर्माण के व्यापक प्रचलन ने शिल्पियों की स्थिति को बेहतर बनाने और सामाजिक स्थिति को सुधारने में प्रमुख भूमिका निभाई होगी। उत्तर में तुर्क शासकों ने युद्धबंदियों को शिल्पी बनाया। दक्षिण में भी चोल शासक करिकाल ने श्रीलंका के युद्धबंदियों के श्रम से कुहार का प्रसिद्ध बंदरगाह बनवाया। उसके समय में भी कावेरी के जल को नहरों में प्रवाहित करके सिंचाई की व्यवस्था थी। कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के फैलने पर आदिम जातियां जब इस व्यवस्था में आई, तब उन्हें शूद्र माना गया, किंतु ये लोग खेती करते थे और समृद्ध थे। इनकी स्थिति अन्य शूद्रों की तुलना में बेहतर थी। लगता है जाट भी इसी प्रकार की कृषिकर्मी जाति थी जो वर्ण व्यवस्था में अभी तक पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाई है। ऐसी आदिम जातियां दक्षिण में भी रही होंगी। वन्यजीवी जातियों के साथ साथ इन अपेक्षाकृत समृद्ध अवर्ण कृषिकर्मी जातियों का भी भक्ति आंदोलन के प्रति आकृष्ट होना या भक्ति आंदोलन के मूल में होना संभव है। कांचीपुरम का बुनकरों का केंद्र और राजधानी होना संकेतपूर्ण है। आलवारों में दो शूद्र एक अत्यज एक महिला का होना, रामानुज का शूद्र कांचीपुरम को गुरु बनाना, शूद्र मित्र से सत्संग करना, यह सब परस्पर असंबद्ध नहीं। इन सब ने उस परम लोकवादी आंदोलन के प्रवर्तन में योगदान किया जो धर्म के सहारे निम्न वर्ण, दीन दुखी, शोषित, उपेक्षित और नारी को भावनात्मक धरातल पर अन्यों के समकक्ष घोषित किया करता था। लेकिन यह सब किसी विशिष्ट विचारधारा या विश्वबोध के बिना संभव नहीं था। सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का रूप तभी लेते हैं जब कोई अनुकूल विश्वबोध या विचारधारा मिल जाती है। विश्वबोध सृष्टि को विशेष तौर पर व्याख्यायित या व्यवस्थित करता है। विचारधारा सामाजिक आंदोलन का प्रेरणा स्रोत और प्रतिफलन दोनों है। शंकर के अद्वैत में जगत की वास्तविकता नहीं है, जो दिखलाई पड़ रहा है वह नहीं है, वह भ्रम के कारण इस रूप में दिखलाई पड़ रहा है। यह जगत की स्थिति हुई। सत्य है ब्रह्म, किंतु ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। यह निर्विकार निराकार ही नहीं अनिर्वचनीय भी है, यानी उसके विषय में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। वह विशेषण से अलग है, न प्रतिषिद्ध सर्व विशेषत्व ब्रह्मण। रामानुज का शंकर से विशिष्टाद्वैत का अद्वैत से मूल अंतर यही है। शंकर का ब्रह्म विशेषण से रहित है, रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त विशिष्ट है, इसीलिए उनका अद्वैत विशिष्टाद्वैत है। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं, वास्तविक है। जीवन और जगत ब्रह्म के शरीर हैं, शरीर ही ब्रह्म है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है, जैसे शरीरी शरीर का। चेतन अचेतन जीव और प्रकृति दोनों उसके अंग हैं। अत सर्वम परम पुरुषेण सर्वात्मनाम स्वार्थे नियाम्यम धार्य तक्षय शतय स्वरूपमिति सर्वचेतना चेतनम तस्य शरीरम। जगत ब्रह्म का विश्लेषण है, विशेषण है, ब्रह्म विशेष्य है। जैसे नील कमल का नीलत्व कमल से पृथक नहीं, वैसे ही जगत ब्रह्म से पृथक नहीं। इस जगत को महत्व देने में भक्ति और लोकोन्मुक्ता का बीज है। जो है दिखलाई पड़ रहा है वह मिथ्या नहीं, सच है। यह लोक और लौकिक यथार्थ की विश्वबोधात्मक या विचारधारात्मक स्वीकृति है। अब चिंतन, दर्शन और धर्म का केंद्र अमूर्त ब्रह्म नहीं रह गया। धर्म का सरोकार इस दृश्य समता विषमता से युक्त भौतिक जगत से भी हो गया। रामानुज के चिंतन पर आलवारों के प्रभाव को स्वीकार किया गया है, किंतु रामानुज के विशिष्टाद्वैत के बिना आलवारों की साधना आंदोलन नहीं बन सकती थी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की धारा दक्षिण से आई। रामानुजाचार्य जो कार्य दक्षिण में 12वीं शताब्दी में कर चुके थे, उसे 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में रामानंद ने किया। यह 3 शताब्दियों का अंतर इसलिए नहीं था कि उत्तरी भारत में परिस्थितियों का अभाव था, इसका कारण था विचारधारा का अभाव, जिसके लिए उत्तरी भारत को प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुर्की शासकों के आने से शिल्पियों की संख्या बहुत बढ़ी, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और इससे निर्गुण संप्रदाय के विकसित होने की भूमि तैयार हुई। किंतु जाति प्रथा भारत में बहुत पहले से, लगभग 1वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास टूटने लगी थी। वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन उसकी आंतरिकता में उथल पुथल मच रही थी। उत्तरी भारत में भक्ति की विचारधारा या भक्ति का शास्त्र दक्षिण से आया, किंतु उत्तर भारत में आकर वह दक्षिण जैसा शांत और स्निग्ध नहीं रह गया। उत्तर में वह खरा, आग्रही, अधिक विद्रोही एवं आक्रामक बना। इसके लिए केवल तुर्की का शासन जिम्मेदार नहीं, इसके लिए नाथ सिद्धों की आत्मविश्वासी और वर्ण व्यवस्था का तीव्र विरोध करने वाली परंपरा जिम्मेदार है। इसीलिए दक्षिण भारत में न तो हठ योग और भक्ति का वैसा मिलन हुआ और न वैसा अखड़पन दिखलाई पड़ता है जैसा कबीर में है। दक्षिण में इस्लाम के साथ सूफी संप्रदाय और हठ योग की साधना का मेल भी नहीं हुआ। इसीलिए रामानुजाचार्य सारे विद्रोह विरोध के बावजूद वर्णाश्रम व्यवस्था और सामाजिक मर्यादा, खान पान में भेदभाव के विरोधी नहीं, समर्थक थे। शूद्र गुरु कांचीपूर्ण से उपदेश लेने वाले रामानुज ने जगन्नाथपुरी में जाकर खान पान में भेदभाव स्थापित करने का प्रयास भी किया। वस्तुतः रामानुजाचार्य वर्ण व्यवस्था के समर्थन और विरोध के मध्य स्थित दिखलाई पड़ते हैं। के दामोदरन ने वर्ण व्यवस्था के प्रति उनके दृष्टिकोण की व्याख्या इन शब्दों में की है। रामानुज ने भी सामंतवाद की परिधि के भीतर ही अपने सिद्धांतों का विकास किया, तो भी जाति प्रथा के प्रति उनका दृष्टिकोण उतना अनमनीय और रूढ़ नहीं था जितना शंकराचार्य का। उन्होंने घोषणा की कि भक्ति सभी जाति भेदों के ऊपर है और वह ईश्वर की आराधना में सबके लिए समानता के समर्थक हैं। उनके अनुसार विष्णु के सभी भक्त समान हैं, क्योंकि सभी लोग ऊंची जाति वाले और नीची जाति वाले ब्रह्म की ही अभिव्यक्तियां हैं। तो भी उन्हें उन जाति बंधनों को तोड़ने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो वैष्णव समाज को विभाजित किए हुए थे। इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए यह नियम बनाया गया कि सभी भक्त भोजन तो अलग अलग करेंगे, किंतु भजन प्रार्थना एक साथ करेंगे। बाद में धार्मिक आंदोलन द्वारा रामानुज के अनुयायियों ने इस अवरोध को भी तोड़ दिया। रामानुज ने तो यहाँ तक कहा है कि ईश्वर की भक्ति के लिए अंतिम विश्लेषण में किसी पुरोहित वर्ग की भी जरूरत नहीं। रामानुज के विचारों को ढंग से देखने का यह तरीका यह देखना है कि उनके विचारों का विकास किस दिशा में हो रहा था। यह दिशा निर्धारित की रामानंद ने। आचार्य हजरप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में सच पूछा जाए तो मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद ने वर्णाश्रम व्यवस्था को भक्ति के लिए व्यर्थ बताया। रामानंद ने देखा कि भगवान के शरणागत होकर जो भक्ति के पथ में आ गया, उसके लिए वर्णाश्रम का बंधन व्यर्थ है। इसीलिए भगवत भक्त को खान पान के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। यदि ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जन्म से नहीं। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के लिए वर्ण व्यवस्था को रामानंद ने व्यर्थ बताया। उनके द्वारा भक्ति आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। उन्होंने भक्ति के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बनाकर उसके सामंत विरोधी रूप को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्ण मतवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें अमीर गरीब, स्त्री पुरुष निर्गुण सगुण हिंदू मुसलमान सब आ सके। जिस व्यक्ति को इतने आग्रह से अपना गुरु कबीर ने बनाया हो या माना हो वह कैसा रहा होगा। कबीर जिसे गुरु माने वह सचमुच कितना माननीय होगा। रामानंद ने सामंती व्यवस्था की प्रमुख सामाजिक विशेषता जाति प्रथा को, जिससे नारी पराधीनता की समस्या भी जुड़ी है, भक्ति के लिए व्यर्थ और अस्वीकार्य बना दिया। यह उनका और भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भक्ति भावना को इतना व्यापक और लोकोन्मुख न बनाया होता तो भक्ति साहित्य भी इतना मानवीय और महान न बन पाता। निसंदेह इस महानता की पृष्ठभूमि का निर्माण उत्तर और दक्षिण भारत में ऐतिहासिक सामाजिक परिस्थितियों ने किया था। उसका विकास प्रचार सिद्धांत निर्माण आलवारों और रामानुजाचार्य ने किया था, किंतु उसे निर्णायक मोड़ रामानंद ने दिया। रामानंद ने ही हिंदी को धर्म प्रचार का साधन बनाया। उन्होंने लोक भाषा को अभूतपूर्व महत्व प्रदान किया। रामानंद ने राम और सीता के आदर्श मर्यादावादी उदात्त रूप को उपासना का आलंबन बनाया। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को सतर्क भाव से लोकोन्मुख और बहुत दूर तक लोकवादी बनाया। उन्होंने भक्तों का दल भी संगठित किया। रामानंद अपने मूल संप्रदाय से खान पान के प्रश्न पर अलग हुए थे। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में दी हुई है। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसरा पद्मावती नरहरी पीपा भावानंद रैदास धनासेर सेन सुरसुर की धरहरी। इनमें कबीर जुलाहा पीपा राजपूत रैदास चमार धना जाट और सेन नाई थे। आज भी यह आश्चर्यजनक लगता है कि इतने विद्वान ब्राह्मण आचार्य ने चमार जुलाहा नाई आदि को अपना शिष्य कैसे बनाया। ध्यान देने की बात यह भी है कि नाई जुलाहा चमार को दीक्षा देने वाले आकाश धर्मा गुरु ने पद्मावती को तथा सुरसुरानंद के साथ उसकी घरवाली को भी दीक्षा दी। आलवारों की आवृत्ति हो गई, वहां भी शूद्र और नारी, यहां भी शूद्र और नारी। इस प्रकार शूद्र और नारी अंडाल को लेकर जो भावनात्मक साधना दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई वह शास्त्रीय विचारधारा के सहारे उत्तर भारत की स्थिति में यहाँ भी शूद्र और नारी को अपनी परिधि में ग्रहण करती हुई भारतीय इतिहास के सर्वाधिक व्यापक और दूरगामी आंदोलन में पर्यवसित हुई। रैदास रामानंद के शिष्य थे। रैदास की शिष्या मीराबाई कही जाती हैं। रैदास चमार थे। मीराबाई सिसोदिया वंशी उदयपुर के इतिहास प्रसिद्ध राणा सांगा की पुत्रवधू थीं।